हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 16 श्लोक नंबर 7 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममायम् प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकीम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की तीसरा स्कंद अध्याय 16 जिसका शीर्षक है वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजय को मुनियों द्वारा श्राप। जब जय और विजय को मुनियों द्वारा श्राप मिल ही गया तो भगवान ने आकर बाहर उन मुनि कुमारों से उन चतुष कुमारों से क्षमा याचना की और कहा कि ब्राह्मण मुझे इतने प्रिय हैं कि यदि स्वयं मेरे ही परिकर घरों ने उनका अपमान किया है तो ऐसा ही लगता है कि क्योंकि स्वामी के जो सेवक होते हैं वो जब कोई अपराध करते हैं तो उसका सारा दोष स्वामी पर आता है और यदि मेरी भुजा भी ब्राह्मण का अपमान करेगी तो मैं अपनी भुजा को भी काट दूंगा और इसमें तनिक भी संकोच नहीं करूंगा। और उन्होंने क्योंकि आपके प्रतिकूल आचरण किया है तो उन्हें अवश्य उसका दंड मिलना चाहिए। आगे भगवान चतुष कुमार को कहते हैं कि मेरे चरण कमल इतने पवित्र हैं कि जो भी उनको उनके दर्शन करता है कि जो भी उनको स्पर्श करता है उनके सारे अपराध नाश हो जाते हैं। और मैं क्योंकि भक्तों को बहुत सहायता करता हूँ इसलिए मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है। और जो लक्ष्मी महारानी है जिसको प्राप्त करने की सब इच्छा करते हैं, मेरा उनके अंदर कोई लगाव नहीं है लेकिन मेरे प्रति उनकी इतनी इतना प्रेम है कि वो जिधर भी मैं जाता हूँ तो मेरे पीछे पीछे वो आती हैं और सदैव मेरे साथ रहती हैं। और मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं अपने भक्तों पर सदैव कृपा करता हूँ और उनकी सदैव सहायता करता हूँ। भगवान कहते हैं, यत् सेवया चरण पद्म पवित्रणेणु सद्य क्षताखिलमलम प्रतिलब्धशीलम् नः श्रीविरक्तमपि मां विजहाति यस्य। प्रेक्षा लवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति यत् सेवया चरण पद्म पवित्रणेणु सद्य क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम् नः श्रीविरक्तमपि मां विजहाति यस्य। प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति यत् सेवया चरण पद्म पवित्रणेणु यत् मन जिसकी सेवया मन सेवा द्वारा चरण अर्थात चरण या पांव पद्म यानी चरण कमल पवित्र रेणु पवित्र माना बहुत ही पावन पवित्र रेणु माना धूल सद्य खिता सद्य अर्थात तुरंत क्षित अर्थात पहुंची गई खिल मलम खिल अर्थात अखिल समस्त मलम यानी सारे पाप सद्य खिता खिल मलम यानी जैसे ही भगवान के चरण कमलों का स्पर्श होता है सारी अपराधों की जो मल है वो साफ हो जाती है। प्रतिलब्ध शील प्रतिलब्ध अर्थात अर्जित हो जाता है शील यानी स्वभाव न शीर विरक्तम अपिमा विजहाति यस्य न यानी नहीं श्री यानी लक्ष्मी जी विरक्तम कोई आसक्ति नहीं रखना यानी मैं तो लक्ष्मी जी के प्रति आसक्त नहीं हूँ लेकिन अपि यद्यपि माम यानी मुझको विजहाती छोड़ती है यस्य लक्ष्मी वो मुझे नहीं छोड़ती है सदैव मेरे साथ रहती है। प्रेक्षालव अर्थ इतरे प्रेक्षालव अर्थ अर्थात थोड़ी भी कृपा पाने के लिए इतरे यानी अन्य तथा ब्रह्मा जैसे नियमान अर्थात पवित्र व्रतों को विहंति वहंति अर्थात पालन करते हैं। अनुवाद भगवान कहते हैं भगवान ने कहा कि चूंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं यद्यपि उसके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है और अन्य लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उसकी रंच मात्र कृपा प्राप्त करने के लिए भी पवित्र व्रत करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान तथा उनके भक्त के मध्य में मध्य का संबंध दिव्य सुंदर है। जिस तरह भक्त सोचता है कि भगवत भक्त होने से वह समस्त गुणों में संपन्न हो जाता है उसी तरह भगवान भी सोचते हैं कि सेवक के प्रति उनकी भक्ति के कारण ही उनकी सारी दिव्य महिमाएं बढ़ गई हैं। हरि बोल। जैसे भगवान का भक्त अगर कुछ श्रेय मिलता है उसको जीवन में कुछ भी अच्छा होता है ना तो वो कभी नहीं सोचता कि क्रेडिट मेरा है या मैंने कुछ किया। जो भक्त होगा ना वो यही सोचेगा कि भगवान की कृपा है। और आज यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान का क्या स्वभाव है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजामि अहम्। जैसा भाव मेरे भक्त का होता है ना वैसा ही भाव भगवान का होता है। तो भगवान भी उनके पास जो ऐश्वर्य है जो जो उनका वैभव है वो क्या सोचते हैं कि सेवक के प्रति उनकी भक्ति के कारण ही उनकी सारी देवीय महिमाएं बढ़ गई हैं। दूसरे शब्दों में जिस तरह भक्त भगवान की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, उसी तरह भगवान भक्त की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर भगवान यह स्वीकार करते हैं कि यद्यपि उनमें निश्चित रूप से ऐसा गुण है कि जिस किसी को उनके चरण कमलों की धूल का कण भी प्राप्त हो जाता है, वह तुरंत ही महापुरुष बन जाता है, किंतु यह महानता अपने भक्त के लिए उनके स्नेह के कारण ही है। इसी स्नेह के कारण लक्ष्मी जी उन्हें छोड़ती नहीं और एक नहीं हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। भौतिक जगत में लक्ष्मी जी के रंच मात्र कृपा पाने के लिए लोग तपस्या के अनेक अनेक करोड़ों कठोर अनुष्ठान का पालन करते हैं। भगवान भक्त की किसी भी असुविधा को सहन नहीं कर पाते, इसीलिए वे भक्त वत्सल रूप में विख्यात हैं। आगे भगवान कहते हैं, नाहं तथात्मीय जमानः विरावितानि श्योतद्रितप्लुतमदन हुतभुङ्मुखेन यद्ब्राह्यणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहित जिन निज कर्म पाकै। नाहं तथात्मी यजमानः वीर्तानि श्चोतद्रितप्लुतमदन हुतभुङ्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुघासम् तुष्टस्य मय्यवहित वितर्निज कर्म पाणे। हम अक्सर भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं और यज्ञ में आहुतियों को स्वाहा किया जाता है। यज्ञ अग्नि को भगवान का मुख कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं उस यज्ञ अग्नि में आहुति डालने से मैं इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना कि कभी ब्राह्मण के मुख में आप भोजन पे डालते हो, यानी ब्राह्मण को जब हम भोजन कराते हैं उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसे भगवान ब्राह्मण को भी भगवान का मुख कहा जाता है। जब ब्राह्मण संतुष्ट हो जाता है तो भगवान भी संतुष्ट होते हैं। नाहम तथात्मी नाहम न मना नहीं अहम मना में तथा मना दूसरी ओर अदमी यानी खाता हूँ यजमान यज्ञकर्ता द्वारा हवि यानी आहुति विताने यज्ञ अग्नि में। यज्ञ अग्नि में जब आहुति डाली जाती है श्योतितम अर्थात डालते हुए धृत अर्थात की लुप्तम अर्थात मिश्रित आदन यानी खाते हुए यानी उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना घी को लगाकर जब हुतभू यज्ञ की अग्नि मुखे न मुंह से यत क्योंकि ब्राह्मणस्य ब्राह्मण के मुखतः मुख से यानी ब्राह्मण के मुख में यदि घी से लगी हुई बहुत ही सुंदर तरह से बनाई हुई प्रसाद हम देते हैं तो उससे इतना प्रसन्न होते हैं जितना यज्ञ अग्नि में आहुति डालने से प्रसन्न नहीं होते हैं। चरतः कार्य करते हैं अनुगास यानी कोर तुष्टस्य मय्य वहितैर्ज निज कर्म तुष्टस्य तुष्ट मय्य यानी मेरे लिए अवहितय यानी अर्पित किया गया निज कर्म पाकय निज मना अपना कर्म यानी कार्यकलाप पाकय मना फलों के द्वारा। अनुवाद यज्ञ अग्नि में जो मेरे ही निजी मुख में से एक है यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे इतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। अब यहाँ पर ब्राह्मण भी ऐसे ही नहीं बताया भगवान ने कि किसी ब्राह्मण को खिलाओगे तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। ब्राह्मण भी कैसे होंगे, मैया वही तैर निज कर्म पाकर, कर्म करते हैं बट कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित करते हैं। भगवान के दिए हुए प्रसाद से ही सिर्फ वो संतुष्ट होते हैं। आजकल ब्राह्मणों की अपनी फरमाइशें होती हैं। आजकल ब्राह्मण सब कुछ खाते रहते हैं, कांदा लहसुन भी खाएंगे, अनियन गार्लिक, और जो भगवान को अर्पित नहीं की जाती है वो। ऐसे ब्राह्मणों के खिलाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान उन शुद्ध वैष्णव, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मेरे प्रसाद से सदैव संतुष्ट होते हैं। जब भगवान को भोग लगता है ना, ब्राह्मणों को वही देना चाहिए। कभी हमारे घर में श्राद्ध होता है या कोई भी, यदि ब्राह्मणों को हम खिलाते हैं ना, तो वो ब्राह्मण जो भगवान को अर्पण किए बगैर खाता है, उसको ब्राह्मण को खिलाने से भगवान सुखी नहीं होंगे, आनंदित नहीं होंगे। यदि भगवान को प्रसन्न करना है या सच्चा जो ब्राह्मण है वो क्या करेगा, पहले भोग लगाएगा भगवान को। जो भी आप बनाओगे पहले बोलेगा इसके अंदर तुलसी पत्ता डालो, भगवान को भोग लगाओ, जब भगवान खा लेना फिर ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, तो इससे भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत भक्त या वैष्णव भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता। देखो श्रील प्रभुपाद जी भी बोलते हैं ना, तो चूंकि वैष्णव अपने सारे कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है, अतः वह किसी ऐसी खाद्य वस्तु का आस्वादन नहीं करता जो पहले से भगवान को अर्पित ना की गई हो। भगवान भी अपने को अर्पित सारे खाद्य पदार्थों को वैष्णवों के मुखों में देकर आस्वादित होते। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान यज्ञ अग्नि तथा ब्राह्मण के मुख के माध्यम से भोजन करते हैं। अतः भगवान को तुष्ट करने के लिए यज्ञ में अनेक वस्तुएं, अन्न, घी आदि अर्पित की जाती है। भगवान ब्राह्मणों तथा भक्तों से यज्ञ की भेंट स्वीकार करते हैं। अन्यत्र यह कहा गया है कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को खाने के लिए जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे भगवान भी स्वीकार करते हैं, किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के मुखों की भेंटों को और अधिक स्वाद से स्वीकार करते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हरिदास ठाकुर के साथ अद्वैत प्रभु के बर्ताव में पाया जाता है। यद्यपि हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्मे थे, किंतु अद्वैत प्रभु ने पवित्र अग्नि उत्सव संपन्न करने के बाद प्रसाद की पहली थाली उन्हें ही भेंट की थी। हरिदास ठाकुर ने उन्हें बतलाया कि मैं मुसलमान परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो आप पहली थाली किसी उच्च ब्राह्मण को भेंट ना करके एक मुसलमान को क्यों प्रदान कर रहे हैं। हरिदास ने अपनी विनयशीलतावश ही अपने को मुसलमान कहकर भर्त्सना की, किंतु अनुभवी भक्त होने के कारण अद्वैत प्रभु ने उन्हें असली ब्राह्मण माना। अद्वैत प्रभु ने कहा कि हरिदास ठाकुर को पहली थाली भेंट करके वे 1,00,000 ब्राह्मणों को खिलाने का फल प्राप्त कर रहे हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई एक ब्राह्मण या वैष्णवों को खिला सकता है तो यह लाखों यज्ञ करने से अच्छा है। इसलिए इस युग में संस्तुति की गई है कि हरे नाम अर्थात भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना और वैष्णवों को प्रसन्न करना ही मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए एकमात्र साधन है। आगे भगवान उन मुनियों को बताते हैं, मेरे चरण कमल इतने पवित्र हैं कि उनका स्पर्श करके वो साधारण सा जल भी गंगा बन जाता है, और उस गंगा को स्पर्श करके करोड़ों करोड़ों जीव आज तक अपने अपराधों को नाश कर रहे हैं, और उस गंगा जल का जल शिवजी अपनी जटाओं में धारण करते हैं, परंतु फिर भी मैं कैसे पवित्र होता हूँ, अपने भक्तों के पैरों की धूल को अपने सर पर धारण करूं। तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा, क्योंकि इसी से तो मुझे ये पवित्रता प्राप्त होती है। ये भगवान की असीम अनुकंपा है, ये भक्तों को श्रेय दे रहे हैं, भक्तों का सम्मान है ये। भगवान कहते हैं, ये शाम विभर्म्यह मखंड विकुंठ योगम माया विभूति रमलांग्री रज किरीट विप्रांस्तु कौन विषहेत पद अणंभ सद्य पुनाति सह चंद्र ललाम लोकान येषां विभर्म्यहम अखंड विकुंठ योग माया विभूति रमलांग्रि रज किरीट विप्रांस्तु कौन विषहेत यद अणंभ सद्य पुनाति सह चंद्र लला मलोकान ये शाम यानी ब्राह्मणों का विभर्मी अर्थात धारण करता हूँ अहम में अखंड अर्थात अटूट विकुंठ बिना अवरोध के योग माया अर्थात अंतरंग शक्ति विभूति अर्थात ऐश्वर्य अमल अंग्री अमल मना शुद्ध अंग्री मना पाँव की रज अर्थात धूल किरीट मेरे मुकुट पर विप्राण यानी ब्राह्मण तू यानी लेकिन कौन विषहेत यदर्हणाम्ब को मना कौन न मना नहीं विषहेत ले जाते हैं यद भगवान का अर्हण अम्ब पावों को धोने से प्राप्त जल सद्य पुनाति सद्य मना तुरंत पुनाति है ना पवित्र सह यानी सहत चंद्र ललाम लोकान चंद्र ललाम कहते हैं शिव जी जिन्होंने चंद्र को अपने सिर पे रखा हुआ लोकान यानी तीनों लोकों को अनुवाद मैं अपनी अबाधित अंतरंग शक्ति का स्वामी हूँ तथा गंगा जल मेरे पांव को धोने से निकलता हुआ जल है वही जल जिसे शिव जी अपने सिर पर धारण करते हैं उनको तथा तीनों लोकों को पवित्र करता है यदि मैं वैष्णवों के पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण करूं तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की अंतरंगा शक्ति तथा बहिरंगा शक्तियों में अंतर यह है कि अंतरंगा शक्ति में अथवा आध्यात्मिक जगत में सभी ऐश्वर्य अविचल रहते हैं जबकि बहिरंगा अथवा भौतिक शक्ति में सारे ऐश्वर्य नश्वर अभिव्यक्ति होते हैं। भगवान की श्रेष्ठता आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगत में समान होती है किंतु आध्यात्मिक जगत में भगवत साम्राज्य कहलाता है और भौतिक जगत में माया का साम्राज्य कहलाता है। माया द्योतक है उसकी जो वास्तव में तथ्य नहीं है। माया का मतलब होता है मां मना नहीं या मना जो है मतलब जो नहीं है उसको माया कहते हैं। उस भौतिक जगत में भगवान की बहिरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत में भगवान की अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति में फर्क क्या है कि अंतरंगा शक्ति जो है वो अविनाशी है सदा रहने वाली है और अविचल है लेकिन जो बहिरंगा शक्ति है वो नष्ट होने वाली है वो नश्वर है। और यहाँ पर भौतिक जगत में माया का साम्राज्य है और आध्यात्मिक जगत में साम्राज्य भगवान का है। माया द्योतक है उसकी जो वास्तव में तथ्य नहीं है। भौतिक जगत का ऐश्वर्य प्रतिबिंबित ऐश्वर्य होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत उस वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की छाया है। असली ऐश्वर्य तो आध्यात्मिक जगत में होता है। आध्यात्मिक जगत के अधिष्ठाता देव स्वयं भगवान हैं, जबकि भौतिक जगत में उनके अनेक स्वामी हैं। अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति में यही अंतर है। भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे ही अंतरंगा शक्ति के प्रधान कारण हैं और यद्यपि भौतिक जगत उनके पाद प्रक्षालित जल से पवित्र बनता है, तो भी उनके मन में ब्राह्मण तथा वैष्णवों के प्रति सर्वाधिक आदर रहता है। जब भगवान स्वयं ही वैष्णव तथा ब्राह्मणों को इतना आदर प्रदान करते हैं, तो फिर इन पुरुषों को ऐसा आदर प्रदान करने से कौन इनकार कर सकता है? श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कहते हैं गौ और ब्राह्मण और जो निस्सहाय प्राणी है वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, मगर जो लोग बुद्धिहीन है वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। भगवान कहते हैं ये मे तनु द्विजवरान्दुहति मदीया भूतान्यलब्ध शरण नीच भेद बुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्य गक्षत दृशो यही मन्यवस्तान गृध्रारुषा मम कुशन्त्य दिदंडने तु ये मे तनु द्विजवरा दुहतीर्मदीया भूतान्यलब्ध शरणान् च भेद बुद्ध्या दृक्षन्त्य गक्षत दृशो यहि मन्यवस्तान् गृध्रारुष मम कुशन्त्यधिदण्डने तु ये मे तनुत ये मना जो पुरुष मे मना मेरा तनुन मतलब शरीर कौन द्विजवरान ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ दुहती गावे मदिया यानी मुझ से संबंधित भूतान्य अर्थात जीव अलब्ध अर्थात अलब्ध शरणानी यानी आश्रय विहीन जो लोग होते हैं जिनका कोई और शरण नहीं होता है ब्राह्मण गव्वे और अलब्ध शरणान यानी शरण विहीन लोग जो हैं वो ये में तनु वो मेरा ही शरीर का अंग है। और आगे भगवान कहते हैं कि च भेद बुद्धिया च मन तथा भेद बुद्धिया मतलब भिन्न मानते हैं दृक्षन्त्य गक्षत तिरचो दृक्षन्ति अर्थात देखते हैं अघ पाप के द्वारा क्षत यानी क्षतिग्रस्त क्योंकि उनके इतने अपराध हैं जिसके द्वारा वो ग्रस्त हो जाते हैं और दृशो यानी निर्णय की शक्ति ही क्योंकि अही अही यानी अही कहते हैं सर्प को सर्पवत मन्यवा यानी क्रोध तान मतलब उन व्यक्तियों को जो हमको अलग अलग देखते हैं उन व्यक्तियों को गृध्रारुषा मम कुशंत्य दिदंडने गृध्या अर्थात गीद जैसे दूत रुषा मन क्रोध से मम मन मेरे कुशंति नोच डालते हैं अधिदंडने तो अर्थात दंड के अधिक्ष यमराज का अनुवाद ब्राह्मण गौवों तथा निसहाय प्राणी मेरे ही शरीर हैं जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है जो उन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं वे क्रुद्ध सर्पों के समान हैं और वे पापी पुरुषों के अधीक्षक यमराज के गीद जैसे दूतों की चोंचों से क्रोध में नीचे डाले जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ब्रह्म संहिता के अनुसार गौओं ब्राह्मण स्त्रियों बच्चे तथा वृद्ध पुरुष निसहाय प्राणी हैं। इन पांचों में से ब्राह्मणों तथा गौओं का इस श्लोक में विशेष
उल्लेख हुआ है, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों तथा गवों के हित के विषय में सदा चिंतित रहते हैं और इसी रूप में वंदित होते हैं। अतएव भगवान विशेष रूप से उपदेश देते हैं कि किसी को इन पांचों से, विशेष रूप से गवों तथा ब्राह्मणों से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भागवत के किन्हीं किन्हीं पाठों में दुहती के स्थान पर दुहित्री शब्द का उपयोग मिलता है, किंतु दोनों ही शब्द से अर्थ एक ही निकलता है। दुहती का अर्थ है गाय और दुहित्री का भी अर्थ गाय हो सकता है, क्योंकि गाय को सूर्य देव की पुत्री माना जाता है। जिस तरह से बच्चों की देखरेख उनके माता पिता द्वारा की जाती है, उसी तरह स्त्री वर्ग की देखरेख पिता, पति या सयाने पुत्र द्वारा की जानी चाहिए। जो लोग असहाय हैं, उनकी देखरेख उनके अभिभावकों द्वारा की जानी चाहिए। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्त्रियां बच्चों की तरह कोमल होती हैं, इसलिए उनको हमेशा अपने माता पिता, अपने पति या फिर अपने सयाने पुत्रों की देखरेख में रहना चाहिए। और उसी तरह यहाँ आगे बता रहे हैं कि जो वृद्ध हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, उनको भी रक्षा मिलनी चाहिए, की जानी चाहिए। अन्यथा वे यमराज जो नहीं करेंगे ना ऐसा, वे यमराज द्वारा दंडित किए जाएंगे, क्योंकि यमराज भगवान द्वारा पापी प्राणियों के कार्यकलापों का निरीक्षण करने के लिए युक्त है। यहाँ पर यमराज के सहायकों या दूतों की उपमा गीधों से की गई है, और जो लोग अपने रक्षियों की रक्षा करने का कर्तव्य नहीं निभाते, उनकी तुलना सर्पों से की गई है। गीध सर्पों के साथ बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव करते हैं, उसी तरह दूत असावधान अभिभावकों के साथ बुरी तरह पेश आते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रीति से समझाया कि हर एक को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, और जो हमारे शरण में है उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जो स्त्रियां अपने पिता के साथ रहती हैं, उन पिता को चाहिए कि उनकी रक्षा करें, पति को चाहिए कि उनकी रक्षा करें, पुत्रों को चाहिए कि उनकी सहायता करें, और जो गौ हैं, ब्राह्मण हैं, इन सबको रक्षा, सुरक्षा और सुविधाएं अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। अन्यथा जो ये लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें तो कॉन्स्टिट्यूशंस का पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कानून के नियम क्या है, तो हम शायद इन अपराधों के दंडों से बच जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये शास्त्रों के रूल्स एंड रेगुलेशंस मनुष्यों के लिए दिए गए हैं, ये शास्त्र जो वेद व्यास जी ने लिखे हैं वो मनुष्यों के लिए लिखे हैं। अगर हम मनुष्य बने हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम शास्त्रों में जाने कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अपराध है, क्या पुण्य है, क्या करने से क्या सजा मिलेगी, ये जानना हमारा कर्तव्य है। इग्नोरेंस इज नॉट मीन्स दैट यू विल बी फ्री फ्रॉम द लॉ। अज्ञानता का मतलब ये नहीं है कि आप कानून के जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के उससे बख्श दिए जाओगे। इसलिए मनुष्य बने हैं जो समस्त प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ हैं, तो हमें अवश्य ये जानना चाहिए कि क्या कर्म करने से हमें नरक में जाना पड़ेगा और कौन से कर्म करने से हमें भगवत धाम प्राप्त होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं, और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।